आप ठीक हैं उधर वाले। माताएं खिसक नहीं रही, गर्म हो गई होगी ना सीट, इसलिए मुश्किल हो गई। उठ जाओ एक बार, वो भी गर्म हो जाएगी। आपकी गर्म सीट दूसरों को मिलेगी, अच्छी बात है ना। ओम शांति। एक विशेष टॉपिक आज हम लेंगे और सभी इस पे चिंतन भी करेंगे, संगम युग पर। बाबा से हमें सब कुछ प्राप्त करना है एक बात, दूसरी है माया के इस युद्ध में कई आत्माएं थकती हैं, पीछे हटती हैं, छोड़ के जाती हैं। 20-30 साल वाले भी छोड़ जाते हैं, कुमार कुमारी तो असंख्य जाते हैं। हम बाबा के अमर बच्चे बने रहें, माया के इस युद्ध में घबराएं नहीं, विजय हमारी होगी। किन बातों किन धारणाओं का बहुत ध्यान रखना है, सूक्ष्म चर्चा करेंगे। कौन सी बाधाएं विशेष रूप में आ रही हैं, पहली बात मैं शुरू कर रहा हूं। मनुष्य को चाहिए बहुत हिम्मत। लौकिक कार्यों में भी और इस अलौकिक यात्रा में भी जिसके पास हिम्मत बहुत अच्छी है उसे क्या मिलेगा, बाबा की मदद मिलेगी। इस बात को दुनिया में कोई नहीं जानता। दुनिया में तो लोग कहते हैं भाई हिम्मत रखो, ये तो ठीक है, पर हमारे साथ बाबा हो जाएगा हिम्मत रखते ही। हजार भुजाओं सहित वो हमें मदद करेगा, कार्यों में भी, पुरुषार्थ में नहीं, लौकिक कार्यों में भी। अगर हम केवल ये भी याद रखेंगे कि बाबा मेरे साथ है तो भी उसकी मदद मिलती रहेगी। ध्यान देंगे सभी, सबसे सिंपल अभ्यास है लेकिन इसकी धुन लगानी है, बाबा मेरे साथ है। अभी अभी छोटेलाल भाई एक अनुभव सुना रहे थे, वो भी आपको सुना दूं। कोई माता जो नई ज्ञान में है, जिसको मास्टर सर्वशक्तिवान का और बाबा मेरे साथ है उसका थोड़ा सा अच्छा अभ्यास हो गया, किचन का दरवाजा खुला रह गया तो तीन मोटे मोटे बंदर आ गए। अब वो लाल मुंह वाले बंदर हैं, उनसे वैसे भी डर लगता है, यहाँ वाले तो अच्छे हैं, वो काटते वाटते नहीं। तो घबरा गई, चिल्लाने लगी इधर आओ ये आओ, वो कोई नहीं आया। लास्ट में याद आया बाबा, और बाबा याद आते ही बंदर हट गए और चले गए। मैंने कहा बस ये ही बात और चेंज करनी है कि लास्ट में आने की बजाय पहले आए, नहीं तो द्रौपदी जैसा हाल होगा। सबके पास गए, हाथ जोड़े, किसी ने मदद नहीं की। जब चीरहरण होने ही लगा तब याद आया वासुदेव है ना, मेरा भाई बना हुआ, तब उसे याद किया, तुरंत आ गया, खेल बदल गया। हम सब ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लें कि इस यात्रा में पहले ही हमें बाबा याद आ जाए, हो सकता है। इसके लिए बहुत अच्छे अभ्यास चाहिए, नहीं तो भिन्न भिन्न परिस्थितियां जब आती हैं तब बाबा याद नहीं आता, बाद में आता है। एक बहन के घर के आगे बड़ा सा सांप आ गया, उसने गीत बजाया हुआ था, उस शिव बाबा का एक गीत है। अब वो उसकी ट्यून ही ऐसी है कि सांप अट्रैक्ट होते, आकर्षित होते हैं। सांप आ गया, वो घबरा गई, दरवाजा तो जाली का बंद था लेकिन वो डर गई, इसे फोन करे उसे करे कोई उठाए नहीं। लास्ट में उसे याद आया बाबा, बाबा याद आया, बाबा याद आते ही उसको संकल्प हुआ ये गीत बंद करो, गीत बंद करते सांप चल दिया, कुछ नहीं कह रहा था, वो जेंटिल था। फिर पता चला ये यहाँ रहता ही है, ये गांव का जैसा देवता है, इसे कोई मानता नहीं है, ये किसी को कुछ नहीं कहेगा। बड़ा था, बूढ़ा हो गया था, बाल आ गए थे, सिर पे आ जाते हैं ना बड़े बड़े। तो बाबा हमारे साथ है, हम ऐसी आदत डालें कि प्रथम क्षण में वो हमें याद आए, तो बाकी किसी की मदद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर पहले और याद आए तो वो मदद तो करेंगे, लेकिन उससे पूर्णता नहीं होगी। फिर लास्ट में बाबा याद आएगा, बाबा लास्ट में मदद करेगा, लेकिन संभव है तब तक खेल थोड़ा बहुत बिगड़ जाए। हिम्मत की बहुत जरूरत है, इस मार्ग पर उतार चढ़ाव आते हैं। आते हैं या नहीं? देखो अमृत वेले का समय भी है, ये नहीं कि केवल उठ जाना ही काफी है। उठ के कभी बहुत आनंद आएगा, कभी मीडियम आएगा, कभी हल्का रहेगा। नींद नहीं है, सुस्ती नहीं है, लेकिन अनुभव अलग अलग होंगे ही, सबके होते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी एक दिन कह दिया, कभी बहुत मजा आता है, कभी कम आता है, सबके साथ होगा ये। नींद भी अच्छी हुई हो फिर भी क्या करेंगे अमृत वेले को सुंदर बनाने के लिए? एक सुंदर सी विधि, पहले 5-7 मिनट अच्छे विचारों में व्यतीत करेंगे। मुझे क्या करना है, बाबा मुझे क्या देना चाहता है, उसकी मुझसे क्या कामनाएं हैं, मुझे कौन कौन से बड़े कार्य करने हैं, थोड़ा सा अपने को जगाएंगे। जितने सुंदर संकल्प हम सवेरे पहले 5-7 मिनट में कर लेंगे, उसके आधार पर हमारा योग बहुत अच्छा होगा। और अगर आप सोचें 3:30 उठ गए, फटाफट नहा धो के चलें, 4 बजे बाबा के रूम में बैठना है, तो आधे घंटे में तो 1000 संकल्प आ सकते हैं। अब जब योग में बैठेंगे तो उनमें से कोई संकल्प जो भारी था वो अब योग नहीं लगने देगा। कोई 1-2 संकल्प भारी भी होता है, कुछ हुआ है पास्ट में वो याद आ गया, बच्चों से कुछ हुआ वो याद आ गया, कहीं और गड़बड़ हुई है वो याद आ गया। इसलिए पहले संकल्प से ही जो अपने को कंट्रोल कर ले, बहुत ध्यान देंगे सभी, पहले विचार को वही करे जो हम चाहते हैं, तो उससे दूसरा विचार जुड़ेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और एक सुंदर चेन सुंदर विचारों की हमारे मन में चलने लगेगी, बहुत फायदा होगा। और अगर उठते ही कोई भी एक गलत व्यर्थ संकल्प आया तो उससे जुड़ के दूसरा तीसरा, फिर उसकी चेन चलेगी। तो कुछ अच्छे संकल्प चुन लेने हैं रात को ही, और ये बिल्कुल श्रेष्ठ गति है ही कि रात को जिन संकल्पों में जिन अभ्यासों में सोएंगे उठते ही वही होंगे। इसलिए सोते समय बेड पर लेटकर अच्छे अच्छे विचार करने चाहिए। तो हिम्मत उतार चढ़ाव होगी। कोई सोचे सवेरे मजा तो आता ही नहीं, छोड़ो सो ही लें, ये भी कई सोच लेते हैं, तो सोते ही रहेंगे, फिर भाग्य सो जाएगा। सो जाएगा या नहीं? जो सवेरे सोएंगे, बात तो खराब सी है, मैं नहीं कहूंगा दूसरी बार, तो अपने भाग्य को जगाए रखने के लिए हमें भी न केवल स्थूल रूप में जगना है, बल्कि सवेरे सवेरे अपनी आत्मा को मन को जगा देना, अच्छी तरह चार्ज कर देना है, उसे चेतन कर देना है। सवेरे वो चेतन आत्मा चेतन होते हुए भी चेतन नहीं रहती, ढीली डाली हो जाती है। हिम्मत हारना नहीं है, कभी विजय होगी कभी कम, कभी सफलता होगी कभी कम सफलता होगी, कभी लोग साथ देंगे कभी नहीं देंगे। बहुत माताओं की कहानियां आ रही हैं, पति भी ज्ञान में चलता था अब छोड़ रहा है, कहता तुम भी छोड़ो, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मर जाऊंगी, घर से निकल जाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, हिम्मत है। और कुछ माताएं परेशान, अब पति कह रहा है या तो ज्ञान छोड़ो या घर छोड़ो, ये सच्ची कहानियां हैं मेरे पास आ रही हैं आजकल। तो क्या करूं, मेरा तो जीवन खराब हो जाए, कहां जाऊं, दुविधा। और जो हिम्मतवान है उनके लिए बाबा द्वार खोल कर रखता है। भूल जाते हैं किसका हाथ पकड़ा है, किसका पकड़ा है, कौन है वो बाबा। सोच के लोग सोचते कोई बाबा होगा इनका भी, बहुत बाबाएं हैं ना आजकल, बदनाम हो गए हैं। जो सर्वशक्तिमान है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, जिसकी शरण में हम आ गए हैं, वो हमारा गाइड है, हमारी छत्र छाया है वो। कई माताओं ने बहादुरी दिखाई, निकल गई घर से, अब वो आता पीछे पीछे। हिम्मत चाहिए। कईयों को संशय आने लगता है, फटाफट संशय। एक रॉयल संशय सुना देता हूं, आज ये हमारे साथी हैं, उनके पास फोन आते हैं, मेरे तो बंद रह जाते हैं। लाया कभी, ये महाराष्ट्र की माता बहुत परेशान है, इससे बात जरूर करनी पड़ेगी। क्या, तीन बार बाबा से मिलने आई, तीनों बार नहीं आया। मैंने क्या पाप किए, मैंने क्या पाप किए, बाबा मेरे से नाराज है क्या, अनेक बातें। और उसका भी यही केस, अब पति ढीला हो रहा है, बाबा तो आता नहीं, क्या करेंगे, पति ढीला हो रहा है, अब मैं क्या करूं। आज सवेरे की बात है, मैंने था तो बहुत बिजी, पर मैं सोचा चलो इससे तो बात कर ही लेता हूं। मैंने कहा बाबा इसलिए नहीं आता, हजारों बार आ गया है, अब कहता है तुम सुधरते तो हो नहीं, अब मैं नहीं आऊंगा, तुम मेरे पास आओ। कहा बात तो ठीक है, हम सुधरते नहीं है। मैंने कहा तुम हिम्मत रखो ना जिन मन में कि मैं जाऊंगी, तुम्हें आना पड़ेगा। ऐसा योग लगाओ कि भगवान का सिंहासन हिल जाए, तुम्हें आना पड़ेगा। परेशान क्यों हो रही हो, संशय आने लगा है। संशय की क्या बात है। मैंने कहा 25,000 लोग नहीं बैठे थे वहां, सब कोई दुर्भाग्य वाले थोड़ा ही थे कि हमने क्या गलती कर ली, हमारा भाग्य खराब है। उनमें से बड़ी बड़ी भाग्यवान आत्माएं भी तो बैठी हैं। तो छोटे छोटे विचार, फिर नशा चढ़ गया उसको। मैंने 2 ही मिनट बात की, चढ़ गया नशा। क्या तो रोज आता है तुमसे मिलने सवेरे। कि हाँ अनुभव तो होता है। क्या रोज आता है। कहा पर वहां मधुबन गई थी, वहां भी तो आना चाहिए था उसे। मैंने कहा ठीक है, मैं पूछ लूंगा क्यों नहीं आया, चिंता न करो। छोटी बातें मनुष्य को दुखी करती है ना। दुखी नहीं होना, बाबा का पाठ तो बदलेगा ना। इसी हॉल में ब्रह्मा बाबा साकार से अव्यक्त हुए, लोग ऐसे ही परेशान थे, अब क्या होगा। 50 साल उससे सुंदर चले, अब अगले 20 साल और सुंदर चलेंगे, बाबा के बिना नहीं। बाबा तो ऊपर से साथ देगा ही। साकार में आना, अगर वो आता भी रहे तो ऐसी परिस्थिति आएंगी आप नहीं आ पाओगे, यहां चटके टूट जाएंगी, ट्रेन ही बंद हो जाएंगी, कुछ नहीं चलेगा, जो जहां है वहीं रहेगा। इसलिए क्या होगी सत्य बात, जो जहां है अगर वो योग युक्त है, अगर बाबा उसके साथ है, तो वहीं मधुबन है। और कोई सोचे मैं तो ग्लोबल हॉस्पिटल में आके ही शरीर छोड़ूं, ऐसे बहुत लोग हैं। अब शरीर तो छोड़ दे लेकिन दुखी होके छोड़ रहे, हाय मेरा पति, पता नहीं बच्चे ठीक होंगे या नहीं, मैं दूर पड़ी हूं यहां, तो श्रेष्ठ गति होगी। और घर में है और बाबा की याद है और शरीर छूटे तो सर्वश्रेष्ठ गति होगी। इसलिए महत्व स्थान का नहीं, महत्व स्थिति का है, ये भूलना नहीं है। तो हिम्मत नहीं हारनी है, बाबा तो अब नहीं आएगा, फाइनल समझ लो, हमें जाना होगा उसके पास, स्वीकार है। और अब ये ना सोचो यहां कोई नहीं आएगा, यहां तो लाखों आएंगे रोज, मस्तक टेकने आया करेंगे, यहां यहां का पानी पीने आएंगे, ले जाते हैं, ये अमृत बन जाएगा। यहाँ की तो मिट्टी तो कहीं रही नहीं, शायद बगीचे में हो थोड़ी बहुत, मिट्टी लगाएंगे सिर को, फर्श से ही पहुंच के लगा लिया करेंगे। ये स्थान और लोग उनको भी देखने आएंगे जो भगवान से बार बार मिले हैं, भाग्य का गुणगान करेंगे। तब नशा चढ़ेगा जिनको नशा नहीं चढ़ रहा है कि हम कितने भाग्यवान हैं, किसका साथ मिला, किसको देखा है। इसलिए अपने को बहुत अच्छी स्थिति में रखना है। दूसरी धारणा भी मैं ध्यान दिलाऊं, ये बात तो लंबी चल सकती है, आलस और अलबेलापन बहुतों में आता जा रहा है, लेकिन हमें इसको आने नहीं देना है। भाई फोन बंद कर लो जरा, जी जिसके बज रहे हैं। हमें आने नहीं देना है आलस को। शास्त्रों से, भक्ति से ही आलस को छठा विकार माना जाता है। किसी का जीवन बहुत पवित्र हो गया हो, किसी ने धारणाएं बहुत अच्छी अपना ली हो, लेकिन आलस भी साथ चल रहा हो तो क्या होगा? कुछ भी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो आलस को छोड़ने के लिए क्या धारणा चाहिए? बोलो, उल्लास चाहिए, कुछ पाने की तमन्ना, कुछ करने की दृढ़ इच्छा। भगवान सब कुछ देने आया है, हम भी खाली नहीं जाएंगे। वो झोली भरने आया है, हम झोली तो क्या भंडार बन जाएंगे। क्या कहा था 18 जनवरी को बाबा ने? सुखों के भंडार नहीं, सुखों की खान दे दी है तुम्हें। तो अगर जीवन में कुछ पाने का उमंग रहेगा तो हमें सुस्ती नहीं आएगी। सवेरे भी ये उमंग उत्साह और बाबा का प्यार हमें उठा देगा। ये उमंग उत्साह हमें व्यर्थ से बचाएगा, मोह ममता भी छुड़ाएगा। जब मोह ममता की बात आती है तो मुझे अपनी माताओं बहनों को एक बात अवश्य कहनी है, इससे थोड़ा मुक्त होते चलो, क्योंकि संसार में मातृ शक्ति आने वाले समय में बहुत कष्ट पाएगी। किसके कारण? मोहों के कारण। इसको ढीला करना ही है। माताएं हो या भाई हो, जिसको भी मोह ज्यादा होगा उन्हें अति कष्ट होगा। अति कष्ट माना सहन नहीं होगा, दिमाग पर असर आएगा, हर घटना दिमाग को प्रभावित करेगी और जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें संभालने वाला भी कोई नहीं होगा, हॉस्पिटल काम नहीं करेंगे। इसलिए बोलो क्या विचार है? मनुष्यों से भी मोह कम करना होगा और साधनों से, वस्तुओं से भी। दोनों मोह खतरनाक हैं। आज जो हमारे पास चीजें हैं, मान लो सुंदर सा मोबाइल है, उस पर हम आधारित हो गए हैं, कल वो खिलौना बन जाएगा, नहीं काम करेगा। हमें निराधार होना है। बाबा के महावाक सबको याद रखने हैं, अंत में हर आत्मा निराधार हो जाएगी अकेली। न बच्चे आपको साथ देंगे, न आप बच्चों को दे पाएंगे, न धन आपको साथ देगा, न धन आप कमा पाएंगे, न पद पोजीशन आपके काम आएगी, न मान शान सुंदर मकान काम आएंगे, न सुंदर बिस्तर गद्दे काम आएंगे। काम आएगी अच्छी नींद, चाहे वो नीचे ही आ जाए। इसलिए मैं दो धारणाएं आपके ध्यान में दे रहा हूं और सभी तैयारी करें, क्योंकि तब कुछ नहीं होगा। एक, बहुत हल्के रहना, और हल्के रहने के लिए ये है, जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ होगा वो हमें पहले से ही पता है, और डिटेल बताएंगे, दिनों दिन बताते जाएंगे। जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसे स्वीकार कर लेना। जैसे मृत्यु है, आज भी पूरे कल्प में मृत्यु, इस पर किसी का अधिकार नहीं। यह है, बोलो है? नहीं है। एक बहन आई थी, अभी बाबा का टर्न था ना, बात तो बिल्कुल भारी है। 21 साल का एक ही लड़का था, मृत्यु हो गई। अब लड़के क्या है, बाइक जरा तेजी नहीं, दिखावा भी जा, जिग जैग कहते हैं, कारें हैं चल रही है, काटेंगे फटाफट, एक्सीडेंट होके मृत्यु हो गई। अभी माता तो ठीक ज्ञान में, लेकिन जो उसका युगल था उसको संशय, बाबा ने हमारे बच्चे को क्यों नहीं बचाया। अब बार बार बोलता है तो माँ को भी असर हो रहा है, एक ही तो था ना, बहुत असर हो रहा है। अब उन्हें तो ये पता नहीं कि बाबा ने थोड़ा ही कहा था बाइक जिग जैग चलाओ, वे आराम से चलो ना, भीड़ है तो थोड़ा कंट्रोल में चलो ना। बहुत केस हो गए हैं, अच्छे अच्छे साहूकारों के बच्चे, एक ही बच्चा बाइक से एक्सीडेंट में मर गए बेचारे दुखी। मैं एक जगह अभी महाराष्ट्र में गया था, एक युगल आए, अभी ज्ञान नहीं लिया था, वही केस, एक ही लड़का था, पैसे वाले बहुत, बहुत पावरफुल बाइक दी हुई थी, आजकल 5-7 लाख की आती है, घुर घुर करके चलती है ना, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, सब देख लेते हैं क्या जा रहा है, तेज चलाया, टकराए, मृत्यु। अब बेचारे रो भी नहीं पा रहे थे, ऐसा हाल हो गया था। कोर्स तो छोड़ो, मैंने उन्हें यही कहा, बस ये बाबा करूं मैं ना, आधा घंटा यहाँ के रोज बैठो, वहां उन्हें सुख मिलने लगा था, एक ही दिन बैठे थे। तो ये सब बहुत होगा, बहुत ज्यादा होगी एक घटना, छोटे बच्चों की मृत्यु, होलसेल मृत्यु होगी। सुने हैं ना बाबा के मावक, बाबा ने मुरलियों में सब कुछ बताया हुआ, कुछ छुपाया हुआ नहीं है। तो हमें इन चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा, हल्के रहने की प्रैक्टिस, स्वीकार करने की प्रैक्टिस। और दूसरी बात, ये एक हो गई दोनों, दूसरी बात है कि हर आत्मा का कर्मों का हिसाब किताब अपना अपना है, और उन्हें अपने ढंग से ही चुकतू करना है, करना है या नहीं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपका अति प्यारा बच्चा है, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब तो उसका अपना है ना, उसमें कोई माँ या बाप क्या करेगा। तो हरेक आत्मा अपना अपना हिसाब लेकर आई है, अब सबको जाना है, ये स्मृति अभी से पक्की करते चले, तो आने वाले समय में हम अपने को भी संभाल पाएंगे और हमें बहुतों को संभालना पड़ेगा। कुमार भी सुन रहे हैं, संभालना पड़ेगा। आप ना सोचो हमारा किससे मोह नहीं, माँ का ही हमसे है, मोह सबके पास होता है, सबसे बड़ा मोह है अपने शरीर में। इसलिए बहुत ज्यादा देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस जो रोज मुरलियों में आता रहता है उस पर बहुत ध्यान देंगे, तो आलस नहीं, जो करना है वो करना है, उसको नेचुरल बनाओ। केवल सवेरे उठने की बात नहीं, आलस तो भिन्न भिन्न जगह काम करता है। कुमारों का आलस कहाँ होता है जो अकेले रहते हैं, कपड़े धोने हैं, अभी एक ही जोड़ी तो हुए, कल धो लेंगे, फिर दो हुए, ठीक है संडे को इकट्ठे धोएंगे, अब संडे को 5-6 हो गए, अब बहन जी कह रही सेवा करो, कुमार कह रहा बहन जी काम बहुत है घर में, कौन सा काम है कपड़े धोने। एक्टिव कुमार होना चाहिए, कुमार माना एक्टिव। मैंने ऐसे कुमार देखे हैं, 60 साल के हो रहे हैं, खाना बनाते हैं, काम भी करते हैं, सवेरे नेचुरल रूप से उठते, मुझे बताते हैं हम बहुत नेचुरल रूप से सवेरे उठ जाते हैं, कोई सुस्ती नहीं, सारा दिन ऑफिस वर्क भी किया आराम से, मन अगर हल्का रहता और प्रसन्न रहता है तो तन थकते नहीं। लेकिन मन जब बहुत निगेटिव है, बहुत दूसरों के बारे में चिंतन चल रहा है, तो ये जो चिंतन है ना ये हमें थकाता है। अपना चिंतन हेल्दी करेगा, एनर्जेटिक, दूसरों का चिंतन कमजोर करेगा, ठंडा। अलबेलापन बहुतों में रहता है, क्या है अलबेलापन, ठीक है जो मिल जाएगा ठीक है ना, बाबा के तो बन गए और क्या भाग दौड़ करनी है, अब पहले ही दुनिया में बहुत टेंशन थी, अब नई टेंशन राजा ही पानी है, छोड़ो जो मिलेगा ठीक है, स्वर्ग में तो जाएंगे, रजाई तो मिलेगी, राजाई नहीं तो, सतयुग में रजाई नहीं होती आपको बताओ, इसलिए राजाई चाहिए, लेंगे अलबेलापन। सभी थोड़ा ही विजयमाला में आएंगे, 108 ही तो आएंगे, ठीक है अभी क्यों ज्यादा चक्रों में जाना है, ठीक है। कल एक भाई आया मेरे पास विदेश का, बहुत हंसमुख सारा बताया, कहा मुझे तो 8 घंटे योग करना ही है। मैंने पूछा कितना होता है, 4 घंटे होता है। इच्छा थी उसकी बहुत, कामकाज में है वो, पर देखो योगी कौन बन सकते हैं, वो क्वालिटी उसमें थी, मैंने उसे बताया तुम योगी बन जाओगे, बस ये करो। सरल चित्त, बहुत हर्षित मुख, काम तो चिंता ही नहीं करते, सब कुछ ठीक हो रहा है, जो मिला उसमें आनंद, थोड़ा कम मिला तो भी आनंद, नहीं तो 100 डॉलर कमाने आज 80 मिले, 20 कम हो गए परेशान हो रहे हैं, 20 कम हो गए, 20 कम हो गए, ये नहीं। सहज भाव से जीवन जीने वाले, हर कर्म का आनंद लेने वाले योगी बन सकते हैं। तो अलबेलापन रहता है कर लेंगे, और क्या प्रैक्टिकल होता है, देखो प्रैक्टिकल बात। भाई बहने क्या सोचते हैं गृहस्थ वाले, ये काम है ना एक, बस ये पूरा हो जाए, बस फिर तो हम लग जाएंगे पुरुषार्थ में, बच्चे की शादी है ना 6 मास में है, बस ये पूरी हो जाए, बस फिर हम जैसा योगी कोई नहीं होगा। अब 6 मास तो बीता दिया काम धंधों में, चक्रव्यूह में विचार इतने चल गए कि 6 मास पूरा होने के बाद अब घर में बहू ऐसी आई कि उसको संभालना है, अब सच्ची कहानी सुना रहा हूँ झूठी नहीं, अब उसको संभालना है। कहा अब तो मधुबन भी नहीं आ सकते भाई, इसे संभालना पड़ता है, फिर बच्चा हो गया है, अभी बहू नौकरी पे जाती है, बच्चा मुझे दे गई है, तुम संभालो, हो गया ना 6 मास के बाद पुरसाद। ये मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, माताएं तो सब यही करती हैं इसलिए हंस रही हैं, मुझे पता नहीं, मुझे तो एक का अनुभव मुझे सामने आ रहा है, वो कहती थी बस ये बच्चे की शादी हो जाए ना आपके साथ मैं भी भट्टियों में चला करूंगी। अब भट्टी में चलना तो छोड़ो, भट्टी के पास भी नहीं आती, आप तो भट्टी के पास रहती हो ना सेवा में। इस तरह कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता, जो आज नहीं करता वो कल भी नहीं कर पाएगा, जिसको करना है उसको तो आज से ही करना है, वो इंतजार नहीं करते कि ये काम पूरा हो जाए फिर करेंगे। जो ये इंतजार कर रहे हैं उनकी इंतजार कभी पूर्ण नहीं होती है, इसलिए जो कार्य हैं वो तो करने ही हैं। आप ग्रस्त में हैं, जो भी कार्य आपके पास हैं वो सब आपको करने हैं, लेकिन उसी में श्रेष्ठ पुरुषार्थ की राह निकाल लेनी चाहिए। एग्जाम आ रहा है, अगर स्टूडेंट सोचता है 2 मास पहले से तैयारी करनी है, फिर 1 मास 15 दिन एग्जाम में जाएंगे, 2.5 मास के बाद पुरुषार्थ करेंगे, नहीं होता। 2.5 मास के बाद एग्जाम होते ही दूसरी चीजों की तैयारी शुरू, कोचिंग करनी है, भाई कोचिंग पूरी हो जाए एग्जाम दे दे एंट्रेंस है फिर करेंगे, फिर MBBS में चले गए, भाई पहला ईयर बहुत टफ है अब तो नहीं हो सकता, ये पहला साल बीत जाए फिर करेंगे। कुमार यही होता है ना सबके साथ, वो कभी नहीं कर पाते, बस फिर बुरे संग में गए, पुरुषार्थ तो छोड़ो फिर ब्राह्मण भी नहीं रह पाते, ये बहुत कुमारों के साथ हो रहा है। इसलिए ये पक्का कर दें, जो कुछ करना है अब से, जो अब से नहीं कर सकते वो कभी नहीं कर पाएंगे। परिस्थितियां दिनों दिन बिगड़ सकती हैं, व्यक्तिगत भी तो हमारा कर्मों का खाता चल रहा है ना साथ साथ, हमारे कर्म हमारा पीछा कर रहे हैं, न जाने कब क्या आ जाए जीवन में, किसी को पता है क्या क्या आ जाए। हम यहाँ बैठे हैं, बाहर जाए धरती जोर से हिलने लगे, आपके घर से समाचार आए ये हो गया वो हो गया, आप अभी भाग लें घर, नींद भी ना आए, ये सब होता रहेगा, होता रहेगा। ये तो हमें इन चीजों से बचना है, मैंने 2-3 बातों पर ही आपका ध्यान दिलाया, बहुत हिम्मत, आलस हमारे जीवन में ना हो। समझ लें जो आलस के अधीन है वो राज्य अधिकारी 4 युगों में कभी भी नहीं बनेंगे। राजा अगर आलसी हो जाए, प्रजा वो तो सोती रहेगी, फिर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू आ रहा था, बहुत अच्छा किसने इंटरव्यू लिया है, GTV वालों ने, GTV है शायद, सुशील 67 मिनट का, कितनी अच्छी अच्छी बातें उससे पूछी, बड़ा पोलाइटली वो उत्तर दे रहे थे। आप इतना लंबा समय काम कर लेते हो, ट्रम्प तो सो जाता है ऑफिस में ही, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उनके तो वहीं सुख सुविधाएं होती है ना, वो तो सो जाता है भाई, चार घंटे काम किया भी दो घंटे सो लेता हूँ खा पी के। हमारा प्रधानमंत्री काम ही करता है 16 घंटे। पूछ रहे थे आप में ताकत कहां से आती है, बस संकल्प है ना उसके, मुझे देश के लिए कुछ करना है। ये किसको क्या पता कब ये देश साथ छोड़ जाए, ये क्या पता अगले इलेक्शन में क्या हो जाए। 5 साल मिले हैं तो कुछ करके जाना है, देश के लिए निर्माण करना है। तो कितनी सुंदर एक विजन है, एक दृष्टि है जो उन्हें एनर्जेटिक रखती है। वो भी सोच सकते हैं मैं तो प्रधानमंत्री, बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं ना, कर लो भाई, वो आराम के जीवन भी जी सकते हैं। पहले एक प्रधानमंत्री थे, उनसे बच्चों ने पूछा था आप तो बहुत बिजी रहते होंगे, कहा नहीं नहीं मैं बिजी नहीं रहता, 4 मंत्री हमारे साथ रहते हैं, जो बड़े 4 मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है, कहा ये सब काम करते रहते हैं, मैं ज्यादा बिजी नहीं रहता। लेकिन ये प्रधानमंत्री 16-16 घंटे काम कर लेता है, उसका रहता है आज का काम आज ही पूरा हो जाए, फिर कहीं इधर उधर भी जाना होता है उनको। तो हमें भी बहुत एनर्जेटिक होना है, एनर्जेटिक समझती है ना माताएं भी, और चुस्त दुरुस्त, ढीले ढाले नहीं। अगर कुछ पाना है तो ढिलाई से कुछ प्राप्त नहीं होता है, चुस्ती रखनी है, बहुत करना है। इसके लिए अब आगे की धारणाएं, व्यर्थ में रुचि नहीं। मैं फिर माताओं को एक बात कहना चाहूंगा, बुरा तो नहीं लगेगा, माताओं के पास अगर बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाएं, तो ढूंढती हैं किसके सामने उनको खाली करूं, और खाली करके हल्की हो जाती हैं, होती हैं या नहीं, सत्य बात है ना, ये सत्य बात है। अब कोई बात सुन ली वो भारी कर रही है, किसी को सुना दी तो मन हल्का हो गया, लेकिन फिर क्या होगा, दूसरी बात आ जाएगी, फिर वो सुनाएंगे, फिर तीसरी आ जाएगी, फिर वो सुनाएंगे, नुकसान होगा फायदा। जरूरत किस चीज की है, जो महानता है उस पर ध्यान दिलाता हूं, मातृशक्ति को। महानता ये है कि जो कुछ सुना है उसको समा के समाप्त कर दो। आपके पास कोई आपकी रिलेटिव आ जाती है और वो सुनाती है बच्चे की शादी हुई है, बहू ऐसी ऐसी आई है, बहुत तंग करती है, ऐसी तेज तराक है, ये है वो है। अब आपको एक घंटा बहुत कुछ सुना गई, अब आप सोचेंगे मैं किसी और को सुना दूं हल्की तो हो जाऊं। आप सुना तो दिया लेकिन आप हल्के नहीं हुए। अब रोज होगी ना वो बात। अब आप अगर स्वीकार कर लेती हैं भाई ये कलयुग की आत्माएं हैं, आजकल पढ़े लिखे आ रहे हैं, उनको किसी में अभिमान रहता है, नम्रता नहीं रहती, रॉयल्टी नहीं रहती, सम्मान नहीं रहता, ठीक है इनके साथ ही आगे बढ़ेंगे, तो वो बात आप समा के जीरो कर देंगे, आपको किसी को सुनानी नहीं पड़ेगी। ठीक बात है या नहीं। इसको बाबा कहते हैं समाना। समाना माना अंदर रख लेना, उथल पुथल होती रहे, इसको समाना नहीं कहते कि हम किसी को सुनाए नहीं, उससे तो अच्छा सुना दो। लेकिन अच्छी स्थिति है कि उसको समा के खत्म कर दिया। जैसे भोजन हमने खाया, समाया माना हजम कर लिया, उसका ब्लड बन गया, रस बन गए, लेकिन भोजन हमने खा तो लिया, उल्टी नहीं की, लेकिन हजम नहीं हुआ तो वो नुकसान करेगा। तो ये जो बातें बहुत आती हैं, मैं क्यों सुना रहा हूं, ज्ञान सरोवर में हम गए, चाय पीने आए किचन में, दो माताएं बैठ के बातें कर रही थी, पता चल रहा था सीरियस बात कर रही हैं घरों की। मैं चाय पी के 15-20 मिनट के बाद आ गया तो भी वो बातों में लगी हुई थी, हल्के कर रही थी अपने को दोनों, और फिर मैं नहा धो के घूमने के लिए वहीं आ गया तो भी वो लगी हुई थी। मैं सोचा देखो ये सवेरे के सुंदर समय को अपने को हल्का करने में बिता रही है, और बड़ी खुश होके उठेंगी, लेकिन ये खुशी नहीं है आत्मा को खाली करने वाली। आपने सुना के खाली किया ना, आत्मा भी खाली हो गई। आत्मा को यदि भरपूर करना है तो रूप बदलना सीखना होगा। बाबा बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, देखो विज्ञान ने क्या कर दिया, फैक्ट्रियों में ऐसी वैसी चीजों को इकट्ठी करके सुंदर चीजें बना देते ना, कागज कैसे बनता है, ऐसी वैसी चीजें, घास फूस गोबर ये वो, उसका सुंदर कागज बनता है। हमें भी गए, एक अपने भाई की फैक्ट्री थी कागज की, दिखाने ले गया, इतना कूड़ा करकट पड़ा, गंदगी फैली, में ये क्या है कि इसी से तो कागज बनेगा, ये जो बना रखा है ये इसी से बना है। तो बाबा कहते थे वेस्ट को बेस्ट बना दिया, यूजफुल बना दिया। जो वेस्ट चीजें हम सुनते हैं उनको यूजफुल कर दो। किसने आपको आकर ऐसी वैसी बातें सुनाई, अब आप उसे अच्छे वाइब्रेशंस देकर उसको भी अच्छा बना दें, ये होगा बहुत बड़ा कार्य। तो हम व्यर्थ से बचें। अभी आपको अनुभव होगा ही सबको, अगर आपने एक घंटा किसी से बात की और सवेरे आप योग में बैठे हैं तो योग कैसा लगेगा? नहीं लगेगा, खालीपन होगा, याद न भी आए ना, आपका ब्रेन ब्लैंक होगा, खाली, क्योंकि ये बड़ी सूक्ष्म गति है। जितना हम दूसरों से ऐसी वैसी बातें शेयर कर रहे हैं, हम अंदर से खाली हो रहे हैं, हम उनको समाना नहीं जानते, हम वेस्ट चीज को बेस्ट में बदलना नहीं जानते, तो हमारा चिंतन कमजोर होता ही जाएगा। नहीं तो बाबा कह देता ना, माताओं को युधिष्ठिर ने साफ श्राप दिया हुआ, भाई तुम कोई भी समा नहीं पाओगी, ठीक है बता दिया करो, बाबा कह देता ना, लेकिन बाबा नहीं कहा ना, सुना था ना युधिष्ठिर की कहानी, सुनी है? माताओं नहीं सुनी, गर्दन नहीं हिल रही है। कर्ण भी कुंती का ही पुत्र था, कर्ण की मृत्यु हो गई युद्ध में, अर्जुन ने उसको मार दिया, तो जब चिता जलने लगी तो कुंती भी वहां विलाप करने पहुंच गई। अब युधिष्ठिर ने देखा कुंती क्यों गई वहां, पूछा, कहा ये भी मेरा ही पुत्र था, तुम्हारा बड़ा भाई था, तो उसने कहा तुमने अब तक हमें बताया क्यों नहीं, हमने अपने बड़े भाई को मार दिया, आज से मैं नारी शक्ति को श्राप देता हूं, तुम कुछ नहीं समा पाओगी, तुमने समा लिया इतनी बड़ी बात। तो वहां से दिखा, ये तो कहानियां हैं, वहां से दिखाया कि माताएं बहने समा नहीं पाती युधिष्ठिर का श्राप। मैंने कहा एक कुंती को दिया था, अब सबके साथ चल रहा है? ऐसा नहीं है। हम अपने अंदर योग की शक्ति धारण करें, आठ शक्तियों में एक शक्ति समाने की भी है ना, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, इस स्वमान का अभ्यास करके संकल्प किया करें, मेरे पास समाने की बहुत शक्ति है, तो ये शक्ति जागृत हो जाएगी। हम सबके पास समाने की शक्ति है, माताओं के पास है या नहीं है? नहीं तो मैं बताता हूं, है। बाबा ने उदाहरण दिया था, हम तो ये बातें जानते नहीं थे, हमने तो सब कुछ बाबा से सीखा, उल्टा सीधा सब, उल्टा बाबा सिखाता नहीं, पर मैं कह रहा हूं बाबा ने कहा आपकी अपनी लड़की कोई गलती कराए, मां उस बात को पति को भी नहीं बताएगी, समा लिया या नहीं? और पड़ोसी की लड़की गलती कराए तो अपना कर्तव्य समझेगी, सबको बता दूं। बाबा ने उदाहरण दिया था, तो समाने की शक्ति है ना, मेरी लड़की बाप को भी पता ना चले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, समा लिया ना, इसका अर्थ है समाने की शक्ति है, जहां हम समाना चाहेंगे वहां समा सकेंगे, जहां फैलाना चाहेंगे वहां फैला देंगे, फैलाने से हमारा नुकसान होगा, जिसका फैला रहे उसका तो होगा ही, पर हमारा अपना होगा, हमारी सूक्ष्म शक्तियां भी फैल कर नष्ट हो जाएंगी। तो सभी बहुत ध्यान दें, बहुत सुंदर समय चल रहा है 2018, कौन सा साल है ये? अरे नहीं और कुछ बताओ ना, ये तो मैंने बता दिया आपको, इसमें बताने क्या बात थी, समाप्ति वर्ष। मैं आपको याद दिला रहा हूं, कहीं जनवरी बीतते बीतते आप भूल न जाएं, कौन सा वर्ष है, और इसमें अपने पुरुषार्थ को फाइनल करके समाप्त करना है। मुझे ऐसा लग रहा था, पहले ही लग रहा था, 2018 आने से पहले ही लग रहा था कि ये वर्ष बहुत सुंदर होगा ब्राह्मणों के लिए, लेकिन उनके लिए जो कुछ करेंगे, जो कुछ करेंगे नहीं उनके लिए तो कुछ भी सुंदर नहीं है। और शायद इसके बाद ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का मौका न मिले, परिस्थितियां बिगड़ जाएं, खेल तो बिगड़ता जा रहा है ना, दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार के कगार पर दिखाई देती, किनारे पर, तीसरा विश्व युद्ध अब तो टीवी पे आने लगा है कि अब 73 साल पूरे हो गए हैं, दूसरा विश्व युद्ध 45 में समाप्त हुआ था, 73 73 साल पूरे हो गए, अब 73 साल के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। लोगों को लग रहा है कि लोग मानेंगे नहीं क्योंकि ऊपर से प्रेरणा है ना, लेकिन युद्ध हमेशा एक साथ नहीं चलेगा। मैंने कई बार ये बात आप सबके सामने रखी है, ये इस ड्रामा में बहुत गुह्य रहस्य है कि जब बाबा देखता है कि ये मेरे बच्चे ऐसे तो संपूर्ण बनने वाले नहीं है, 5000 साल भी पुरुषार्थ करेंगे तो भी नहीं बनेंगे, तो वो क्या करेगा, वो करेगा या ड्रामा में है जो भी आप समझें, झटका देगा पहला विनाश का, और अनेक बाबा के बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, जो छोड़ कर गए हैं भाग आएंगे, जो इधर उधर दूसरी पार्टियों में बट गए हैं वो भी भाग आएंगे, फिर वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर दूसरा झटका लगेगा, फिर बहुत आत्माएं भागेंगी, जब ठंडे हुए थे फिर तेज हो जाएंगे, इस तरह 10 झटके लगेंगे, बाप रे नहीं लगेंगे। इन झटकों से बाबा का लक्ष्य होगा सबको जगाना, वैराग दिलाना, संपूर्ण बनाना। अब जब वो देखता है कि ये ऐसे तो बनने वाले हैं नहीं, तो डंडा उठाना ही पड़ेगा ना, अब शंकर जी को आगे कर देगा कि ब्रह्मा जी ने तो बहुत काम कर लिया, अब तुम ठीक करो इन्हें, तो ये खेल चलेगा। अब इसलिए विनाश को एक झटके में हो जाएगा कि अमेरिका या उत्तर कोरिया एटम बम और हाइड्रोजन बम छोड़ देंगे और कुछ नहीं बचेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। एटम बम छोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति बहुत विचार करता है। मैं तो कल परसों जब विश्व युद्ध की बात आ रही तो मैं भी टीवी खोली तो ये आ रहा था, तो लिखा दिखा रहे थे कि रशिया में, रशिया से युद्ध तो आखिर में हुआ था, एकदम आखिर, वहीं से तो हिटलर आ रहा था, हिटलर ने जब लेनिनग्राड था शायद कौन सा सिटी, उसका घेराव डाल दिया था, सेना लगा दी थी, तोपे लगा दी थी, 42 लाख लोग मारे गए थे, 42 लाख, और वो तो युद्ध का आखिरी सीन था, उसे पहले तो कितना हाहाकार कर चुका था वो। जापान पे बम डाला, 2 बार अमेरिका ने डाला, पहले ही में 1.25 लाख मर गए, दूसरे में बहुत मर गए, तो अब जापान ने वो दिन मनाया था अभी 2-4 दिन पहले, याद करते हैं वो कितना भयानक था वो समय। तो एटम बम यदि एक भी डाल दिया तो दूसरा डालने वाले का दिल दहलेगा, इसलिए एक साथ कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि प्रेरणा ऊपर से होगी ना, इसलिए लोग मानेंगे भी नहीं, इसने डाला था अब मुझे भी डालना है। लेकिन इसमें बाबा हम सभी को संपूर्ण बनाएगा, लेकिन समय संपूर्ण बनाएगा, हमें सुख नहीं मिलेगा उसका, सुख उन्हें मिलेगा जो अपने पुरुषार्थ से प्रभु मिलन का रोज सुख लेंगे, अपनी धारणाओं से, अपनी यज्ञ सेवा से अपना भाग्य बना लेंगे। ठीक है, अब लाल लाइट का इशारा मिल गया है, सभी अब सवेरे से बहुत आनंदित होकर बाबा से मिलन मनाएंगे। ओम शांति।